हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। सबको सूचित किया जाता है कि आपके सेलफोन्स इस समय आप लोग साइलेंट मोड पर उसको रख सकते हैं। तो दिव्य ज्ञान की व्याख्या भगवान इस चौथे अध्याय में, और आज जो हम श्लोक लेने वाले हैं, आज से आने वाले कुछ चंद श्लोक, भगवान कर्म का नियम क्या है उसकी व्याख्या करने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण ये अब श्लोकों की श्रृंखला है, जहां पर हमारे लिए काफी ये रेलेवेंट है, कर्म के नियम, लॉ ऑफ कर्मा। तो आज इसका भाग एक हम लेंगे। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा। अनुवाद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। आज हम डायरेक्टली कर्म का नियम न लेते हुए आज के श्लोक से संबंधित एक अलग मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हाल ही में हम गौर पूर्णिमा मनाए, तो उसके संदर्भ में आज की क्लास होगी। अभी तक गौर पूर्णिमा का सुरूर है कि नहीं? तो अनुवाद में आपने पढ़ा, भगवान बता रहे हैं प्रवक्ष्यामि। प्रवक्ष्यामि का अर्थ है भगवान बता रहे हैं मैं तुमको बताऊंगा। तो यहां पर भगवान एक मुख्य कारण उनके अवतरण का बता रहे हैं। अवतार क्या है, जब वो लेते हैं अवतार, भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनके बहुत से विभिन्न कारण होते हैं। उन विभिन्न कारणों में से ये कारण है हमें सिखाने के लिए, हमें बताने के लिए। जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में, उस किताब में ये एक उदाहरण दिया है। गौर पूर्णिमा पर ब्रजबिहारी प्रभु भी उदाहरण दे रहे थे, जैसे कि एक शिक्षक, एक टीचर होता है, वो विद्यार्थी को सिखाने के लिए स्वयं विद्यार्थी के स्तर पर आता है। इसलिए यहां पर भगवान वो स्वयं तो कर्म के नियम के परे हैं, उनके ऊपर हमने पिछले श्लोकों में सुना, उनके ऊपर कर्म का कोई नियम लागू नहीं है। और अर्जुन जो भगवान के शुद्ध नित्य पार्षद हैं, अर्जुन के ऊपर भी, क्योंकि अर्जुन वो शुद्ध भक्त हैं, उनके ऊपर भी कर्मों के नियम लागू नहीं है। परंतु ये दोनों मिलकर एक शिक्षक बन रहे हैं, एक विद्यार्थी बन रहे हैं, दोनों मिलकर हमें सिखा रहे हैं। प्रवक्ष्यामि। तो इसलिए आज हम सबसे पहले ये जो प्रश्न है इसका उत्तर जानने की कोशिश करेंगे कि अवतार, हाल ही में युग अवतार इनका आविर्भाव हमने मनाया, जिन्होंने न केवल अपनी वाणी से क्या हमें करना है वो बताया, बल्कि उन्होंने अपने उदाहरण से सिखाया कर कर। जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि चौक लेकर जब टीचर वो ब्लैक बोर्ड पर लिखती है या लिखता है ए बी सी डी या बारह खड़ी जो भी, तो वो अपने स्वयं के उदाहरण से उस विद्यार्थी को सिखा रहा है। वो है चैतन्य महाप्रभु, और हम आज विस्तार से जानेंगे उनके अवतार को। परंतु एक साधारणतः जनरली अवतार किसे कहते हैं? अब देखिए, इस भौतिक संसार में ये आजकल अवतार शब्द कई जगहों पर लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई सुबह सुबह उठा है, नहाया नहीं है 12 बजे तक, तो मां कह देती ये क्या अवतार बना रखा, उसको भी अवतार बोल देती। तो अवतार, हमारे शास्त्रों में अवतार का अर्थ बहुत ही सरल भाषा में संक्षिप्त रूप में बताया गया है, अवतरति इति अवतार, जो उतरते हैं। श्रील प्रभुपाद ने अंग्रेजी में इसको कहा वन हु डिसेंड्स, उतरना। लिटरल मीनिंग इसका क्या है, वन हु डिसेंड्स, अवतरति कहां से, अपने धाम से, इस भौतिक संसार में जो उतरते हैं। अब देखिए, भगवान जब उतरते हैं तो वो साधारण रूप में कुछ नहीं करते, उनका उतरना भी वो हमारे लिए, उनके स्वयं के लिए तो असाधारण है, हमारे लिए विशेष रूप से असाधारण होना चाहिए। तो अब ये भौतिक संसार जहां पर भगवान का अवतरण होता है, वो उतरते हैं, तो पहले ये भौतिक संसार को जानना होगा, क्योंकि तब जाकर उनके अवतरण के विषय में हम उनका गुणगान कर पाएंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने इस भौतिक संसार के विषय में बताया है कि ये भौतिक संसार, जिसको भवसागर भी कहा गया है, ये ऐसा समंदर है जिसके अंदर विशेष रूप से कलयुग का ये भवसागर, क्या बताया गया है कलयुग के भवसागर के विषय में, कलेर दोष निधि, निधि अर्थात समंदर, कलेर अर्थात कलयुग, दोष, दोषों से भरा हुआ समंदर। जैसे खारे पानी से समंदर भरा हुआ रहता है, कहीं पर भी आप जाओ पानी खारा मिलेगा, पानी मिलेगा और वो भी खारा मिलेगा। परंतु ये भवसागर ये कौन से जल से बना हुआ है, हम कलयुग निवासियों के दोषों से। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समंदर जो हमारे दोषों से भरा हुआ है, और ये जो हम लोग समंदर देखते हैं, चाहे बंबई जाओ, कहीं पर भी जाओ, बड़े बड़े जितने भी समंदर देखो, ये जितने बड़े बड़े समंदर अतः जिनका कोई और छोर दिखाई नहीं देता, कई बार है, परंतु ये जिनको कहा गया है कि ऑलमोस्ट लाइक फैदमलेस ओशंस, परंतु ये समंदर पानी वाले, ये भी ये कलयुग रूपी दोषों के समंदर के सामने ये एक छोटा सा कुआं है, ये है भवसागर। अब श्रीमद् भागवत में इस भवसागर के विषय में कहा गया है, एक और उपमा दी गई है, शोकाश्रु भवसागरात, शोक अश्रु किससे बना हुआ है यह भवसागर, इस भौतिक संसार का, हम सब बद्ध जीवों के शोक रूपी अश्रुओं से। अश्रु दो समय निकलते हैं हमारे आंखों से, जब हम बहुत खुश होते हैं तब तब भी आंसू निकलते हैं, और जब हम अत्यधिक दुखी होते हैं आंसू निकलते हैं। और रूप गोस्वामी वो भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि जब अश्रु वो ठंडे हो, उनका टेम्परेचर ठंडा हो, तो समझ लेना चाहिए कि वो खुशी के आंसू हैं, और जब उसका टेम्परेचर गर्म है तो समझ लेना चाहिए कि बहुत पीड़ित अवस्था में वो अश्रु निकल रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में जो बताया गया है कि इस भौतिक संसार का ये जो समंदर है भवसागर, ये हमारे गर्म आंसुओं से बना हुआ है, ठंडे नहीं, उबलता हुआ ये सागर है। और इसको भरने, कल्पना कीजिए कि आंखों से कितने आंसू निकलते हैं, चाहे कोई कितने भी पीड़ा में हो, अगर उसको वो इकट्ठा करे, मान लो उसको कोई बहुत भीषण बीमारी है या मानसिक कोई तकलीफ है, जो भी कोई प्रकार की पीड़ा है, मानसिक है शारीरिक है, कोई रो रहा है, रो रो के कितना आंसू इकट्ठा करेगा वो, एक लीटर, दो लीटर, पांच लीटर, कितना आंसू इकट्ठा करेगा। तो बताया गया है कि संसार, इस भौतिक संसार में हम सब ने मिलकर हमारा हमारा योगदान दिया है, मेरे भी आंसू ले लो, मेरे ना सास ससुर के भी ले लो, हाँ मेरे इसके भी ले लो, परिवार के पूरे खानदान के सारे के आंसू ले लो, सब जितने हम बद्धजीव हैं, जितने अब तक रोए हैं, रो रहे हैं, वो सब के आंसुओं से मिलकर शोकाश्रु भवसागरात हमने ये सागर बना दिया। कौन रोता है किसी और की खातिर दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। ये जो आंसू है हमारे, ये किसी और को लेके नहीं रो रहे हैं। आपको लग रहा हो किसी दूसरे के बिहाफ पे रोक रो के हम लोग भर रहे हैं समंदर को। कौन रोता है किसी और के खातिर, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। कोई यदि गुजर भी जाता है घर पे तो क्या बोलकर रोते हैं, मुझे याद है जब मेरे पिताजी गुजरे थे तो जो हमारी दादी वहीं पे थी, वो इतनी जोर से चिल्ला के रोने लगी और रोते हुए वो कह रही थी, उस समय मैं केवल 15 साल का था, मैं सोच रहा था कि ये विलाप किसके लिए हो रहा है, चिल्लाते हुए मुझे छोड़कर चला गया, मेरा क्या होगा। अब उनकी उम्र उस समय 80 से भी ऊपर साल की थी। तो कोई यदि गुजर भी जाता है तो हम लोग शोक किस प्रकार का, मेरा क्या होगा, अरे वो बेचारा चला गया, वो उसका क्या होने वाला है, उसका जो भी होगा होगा, वो तो चला गया, अभी मेरा क्या होगा। तो आंसू क्या है, मेरा क्या होगा। तो ये है भवसागर। दो प्रकार की उपमाएं दी हैं, एक तो दोषों से भरा हुआ और दूसरा हमारे ही अश्रुओं से भरा हुआ ये समंदर। आगे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि समंदर बना हुआ या समंदर, जब भी हम उसके बारे में सोचते हैं, हमारे जहन में जब समंदर ये चित्र आता है, लहरें, बिना लहरों के कोई समंदर नहीं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये जो लहरें हैं इस भवसागर में, ये लहरों की तुलना किससे की गई है, त्रिताप, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। अर्थात हम लोग इस भौतिक संसार में एक ऐसे जेल में फंसे हुए हैं, एक ऐसा जेल है। अब देखो जेल के अंदर कैटेगरीज होती है ना, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, ऐसे जो बहुत खूंखार जो कातिल होते हैं उनको ऐसे काली, काला पानी की सजा दी जाती है, उसको कहते हैं डंजन, काला पानी। तो हम लोग एक तो भौतिक संसार में, भौतिक संसार में भी कलयुग में, कलयुग क्या है, कलयुग अर्थात अगर इस भौतिक संसार की तुलना एक कचरे के डब्बे से की जाए, बड़ा ड्रम, कचरे का ड्रम, डब्बा नहीं ड्रम, तो अब देखो ड्रम भरने के लिए, पूरा कचरे से वो ड्रम भरने के लिए कितना समय लगेगा, हा? और उसको जब कोई खाली करता है तो सबसे जो नीचे वाला कचरा है उसमें से जो दुर्गंध निकलेगी, ऊपर वाला फिर भी थोड़ा फ्रेश रहेगा, लेकिन जो सबसे नीचे बॉटम वाला जो कचरा है उसको भरते भरते एक महीना लगा है उस ड्रम को कचरे से, और जो सबसे नीचे के लेवल का जो कचरा है उसके अंदर जो बदबू निकलेगी वो है कलयुग, बॉटम ऑफ द ट्रैश कैन। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये सब ऊपर वाले थोड़े फ्रेश कचरे हैं, कलयुग सबसे नीचे वाला। तो यहां पर हाँ, तो हमने तुलना की कि हम लोग काला पानी कलयुग के अंदर, और मान लीजिए कि काला पानी में उस कैदी को और सलाखों से चेन से बांध दिया गया है, तो एक तो इस भौतिक संसार में, ऊपर से कलयुग में, उसके ऊपर फिर ये जो हमारा शरीर, कलयुगी शरीर, कैसा ये कलयुगी शरीर, एक क्षण भी नहीं जाता है जब ये शरीर कुछ ना कुछ डिमांड नहीं करता रहे। चाहे अभी आप लोग पिछले 15-20 मिनट से बैठे होंगे इस कुर्सी के ऊपर और आपको लग रहा होगा कि ये शरीर क्या डिमांड कर रहा है, अभी भी बैठे बैठे डिमांड करेगा, अरे थोड़ा सा इधर साइड में बैठो, ये पैर इसके ऊपर रखो, इसके इधर करो, कुछ ना कुछ तकलीफ चलती रहती चलती रहती। तो ये जो त्रिताप है ये अपने आप में हमारा गीता कोर्स में सेशंस होते हैं, आप लोग अच्छी से जानते हैं, हम लोग अनुभव कर रहे हैं। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हम बद्ध जीव इस सागर में, और हम लोग कूदे क्यों हैं? कोई पूछे भी ओरिजिनली कूदे क्यों, तैरने के लिए, है ना, तैरने में बहुत आनंद आता है लोगों को, तो हम लोग आनंद से तैरने के लिए इस भव सागर में हमने छलांग लगाई। अब ये ऐसा भवसागर निकला जिसके अंदर ये जो लहरें, ये जो तरंगे हैं, ये इतना हमें यहां से वहां थपेड़े मार रही है। अब तैरना, उसके अंदर आनंद कब आता है? जब आपके अनुसार पानी हो। अब यदि तूफानी कोई सागर है जिसके अंदर तूफान मचा हुआ है, ऐसे समंदर में तैरना वो आबेल मुझे मार, तो कभी हमारा शरीर वो एक लहर आकर हमें पीड़ा देती, कभी शरीर ठीक है तो फिर पड़ोसी उसने तकलीफ दे दी, या कोई रिश्तेदार उसने तकलीफ दे दी, अलग अलग प्रकार से अधिभौतिक, वो भी अगर ठीक कर लिया तो फिर अधिदैविक, ज्यादा धूप, ज्यादा गर्मी, ज्यादा सर्दी, बारिश इत्यादि, ये सब। तो लहरें, ये थ्री टाइप्स, भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं कि तीन प्रकार की लहरें, और फिर ये बद्ध जीव सोचता है चलो मैं इस भव सागर में मैं किसी का संग कर लूं, कंपनी में, कंपनी किसकी मिलती है, शार्क्स। अब देखिए शार्क एक ऐसी मछली है जिसको कोई अपने घर में सजाता नहीं, फिश टैंक के अंदर लोग है ना मछलियां रखते हैं ना अलग अलग प्रकार की, कोई शार्क को नहीं रखता है क्योंकि ये नरभक्षी मछली है, बहुत से इसके ऊपर पिक्चरें वगैरह बनी है कि कैसे जो भी अगर गलती से इसके जबड़ों में आ जाए तो उसका क्या हाल होता है। तो मान लो कि कोई मूर्ख व्यक्ति इस समंदर में ऐसे मछलियों के जाके जाके दोस्ती कर रहा है कि एक सोसाइटी बना रहा है, चलो हम लोग प्रेम से मिलकर रहेंगे, किसके साथ, शार्क के साथ प्रेम से मिलकर रहेंगे, मैं भी शाकाहारी, तू भी शाकाहारी, महाप्रसाद गोविंद। तो इस भौतिक संसार के जो भौतिकतावादी लोग हैं उनका संग किसके प्रकार है, जो भौतिक स्तर पर संगठन बनाते हैं अपना, वो लोग आपस में क्या संग एक दूसरे को दे रहे हैं, ये नरभक्षी शार्क इसका संग। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति हाईवे पर लिफ्ट मांगने के लिए खड़ा है और एक ऐसी कार आती है जिसके अंदर ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं, दिखने में अजीबोगरीब हैं, बड़े बड़े टैटू हैं, बाली है बड़ी बड़ी कान में, ऐसे यहां पे चक्कू का निशान है, एक आंख पे वो ये बांधा हुआ है, और वो लिफ्ट दे, आओ बैठो सर बैठो, न तो उनके पास लाइसेंस है चलाने की गाड़ी का, गाड़ी की रफ्तार टॉप स्पीड पे जा रही है, आप अंदर बैठे हुए हो, चारों लोग आपको घेर के घूर रहे हैं, और सामने खाई। तो कई बार एक बद्ध जीव इस संसार में जब किसी का संग करने जाता है तो लिफ्ट मांगता है कि मुझे कोई मदद करेगा, मदद करने के लिए अगर ऐसे लोग मिलते हैं तो उसका हाल क्या होता है, भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं ऐसा हाल होता है। तो आपको हम एक छोटा सा नमूना पेश करेंगे इस भौतिक संसार का, कि भौतिक संसार किस प्रकार से बना हुआ है।
क्या खूब लिखा है किसी ने, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते हैं जिनकी नीयत खराब होती है। न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, ना तारीफ तेरी होगी न मजाक मेरा होगा। गुरूर न कर शाहे शरीर का, मेरा भी खाक होगा तेरा भी खाक होगा। जिंदगी भर ब्रांडेड ब्रांडेड करने वालों याद रखना, कफन का कोई ब्रांड नहीं होता, कोई रोकर दिल बहलाता है और कोई हंस के दर्द छुपाता है। क्या करामात है कुदरत का, जिंदा इंसान पानी में डूब जाता है और मुर्दा तैर कर दिखाता है। मौत को देखा तो नहीं पर शायद वो बहुत खूबसूरत होगी, कमबख्त जो भी उससे मिलता है जीना छोड़ देता है। गजब की एकता देखी लोगों की जमाने में, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। जिंदगी में ना जाने कौन सी बात आखिरी होगी, ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी। मिलते जुलते बातें करते रहो यारों, एक दूसरे से ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी।
ये एक हमको बचपन में गीत, एक हमारे कोई टीचर फिलोसोफर टाइप थे, उन्होंने सिखाया था। तेरी जुबां पे है जिक्र सितारों का, तेरे लबों पे है नाम बहारों का, पर तेरे दामन में कांटे हैं गुलाब नहीं। ये दुनिया है कि यहां पर जिक्र हो रहा है सितारों का, है ना। दुनिया के बारे में
हम लोग चर्चाएं क्या करते हैं कि हाँ मेरी ऐसी दुनिया चल रही है, तुम्हारी कैसी दुनिया चल रही है, तो हम लोग जिक्र करते हैं सितारों का, बहारों का, परंतु जब असलियत में जिंदगी जीने जाते हैं तो फिर कांटे और गुलाब दिखाया जाता है, परंतु जब अनुभव करने जाते हैं तो मिलते क्या हैं, कांटे। अब जैसे कि हमने भक्तिनोद ठाकुर द्वारा दिया गया ये जो उदाहरण भवसागर का, आगे वो कहते हैं, ये फ्लॉटसैम जो इंग्लिश में एक शब्द है, कि समंदर में बहुत से जहाज वो तैरते हुए जब जा रहे हैं तो जो पैसेंजर्स हैं उस जहाज के, वो कुछ ना कुछ, जैसे कोई प्लास्टिक फेंक दिया, कोई टिन, कोई कोक का टिन फेंक दिया, वो सब तैरते रहते हैं, या कोई तिन खेत तैरते रहते हैं, कागज के टुकड़े तैरते रहते हैं, उसको बोलते हैं फ्लॉटसैम। तो इस भौतिक संसार में यदि कोई उनके सहारे, एक कागज की कश्ती के सहारे या फिर एक तिनके के सहारे वो अपने आप को बचाने की कोशिश करे, तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि वो किसके समान है, जब इस भौतिक संसार में त्रस्त ये व्यक्ति कर्मकांड का सहारा लेता है, तो कर्मकांड के सहारे की तुलना इससे की गई है। फिर फाइनली अब हम आते हैं, तो फिर ऐसे बद्ध जीव का उद्धार कब कैसे होगा, जब भगवान अवतरित होते हैं, तो भगवान का अवतरण उनकी तुलना की गई है जैसे कि एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर। तो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर, उसके पास सारे प्रयोजन हैं इस व्यक्ति को इस समंदर से ऊपर उठाने के लिए। पायलट है, वो हेलीकॉप्टर में इतनी शक्ति है, उसके पास वो जो रस्सी होती है वो फेंक, तो भगवान का अवतरण वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के समान है, और भगवान वो जो रस्सी फेंके हैं वो उनकी जो अहैतुकी कृपा है, कोई जरूरत नहीं उनको आकर हमें यहां से रिहा करने की, परंतु कृपावश वो आते हैं। अब देखिए, एक जो भौतिकतावादी का दृष्टिकोण क्या होता है, एक भौतिकतावादी का दृष्टिकोण ये है कि भगवान आप आई गए हो तो समंदर को शांत करो ना, मुझे क्यों उठा रहे हो, मतलब मुझे यहीं रहना है, ये संसार को ठीक बना दो, आपके वहां जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद यहां पर मैंने अपना जो साम्राज्य फैलाया है उसको सुख शांति अपार्टमेंट बना दो आप, एक ये दृष्टिकोण है। और फिर कोई ये कहते हैं कि ठीक है, हम आपके हेलीकॉप्टर में आने के लिए तैयार हैं, ये रस्सी क्यों, बिना रस्सी के ले चलो, क्योंकि वो जो रस्सी को पकड़ के ऊपर आना है उसमें जो मेहनत है, एक भौतिकतावादी दृष्टिकोण वाला व्यक्ति उस मेहनत को नहीं करना चाहता। कैन यू एयरलिफ्ट मी विदाउट मी होल्डिंग दैट रोप? तो अब इसमें सबसे दुर्भाग्यशाली कौन है? सबसे दुर्भाग्यशाली ये है जिसने वो रस्सी को पकड़ा, आधे रास्ते ऊपर उसने वो रस्सी को पकड़कर चढ़ा है, अभी तक हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंचा है, नीचे देखता है, अरे समंदर तो दिखने में कितना अच्छा दिखता है, वापस कूद जाता है। ही इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट। वो भगवान की कृपा को पकड़ा कुछ समय के लिए और उसके पश्चात फिर इस भवसागर से आकर्षित होकर आधे रास्ते से वापस कूद गया इस भवसागर के अंदर। इसलिए श्रील प्रभुपाद एक मॉर्निंग वॉक में, वो भी पैसिफिक ओशन, वहां बहुत सुंदर ये पैसिफिक ओशन अमेरिका में, तो वहां के मॉर्निंग वॉक में एक डिसाइपल ने प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद इज़न्ट दिस पैसिफिक ओशन सो ब्यूटिफुल, प्रभुपाद ने कहा दिस इज लाइक मटीरियल ओशन, मटीरियल वर्ल्ड, इट लुक्स ब्यूटिफुल फ्रॉम द शोर्स. समंदर के तट से समंदर बहुत सुंदर दिखता है, बहुत लोग जाकर बैठते हैं समंदर के तट पर, दूसरे ख्यालों में बैठ के देखते रहते हैं समंदर को, कोई सनसेट कोई सनराइज, हाँ फोटोज खींच रहे हैं और फिर कविताएं रचते हैं. परंतु समंदर तट से बहुत सुंदर दिखता है, जैसे ही उसके अंदर प्रवेश करो तब फिर समझ में आता है कि ये समंदर की चुनौतियां क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस. इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जब हम भौतिक संसार का ये रूप देख लेंगे, जान लेंगे, उसका साक्षात्कार कर लेंगे, तब समझ में आएगा कि अवतार, भगवान का अवतरण कितना महत्वपूर्ण है. और इसलिए हमने जो हाल ही में श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेना, गौर पूर्णिमा मनाई, तो चैतन्य महाप्रभु ये विशेष रूप से कलयुग के युग अवतार बताए गए, युग अवतारी श्री गौरहरि, युग अवतारी उनको बोला गया है. अब देखिए बाकी युगों में रामचंद्र जी जब त्रेता युग में आए तो वो युग अवतार नहीं थे, उस युग के रामचंद्र जी युग अवतार नहीं थे. भगवान कृष्ण जब द्वापर युग में अवतरित हुए तो वो द्वापर युग के युग अवतार नहीं थे भगवान कृष्ण. परंतु वही राम और कृष्ण कलयुग में आए हैं, वो अपनी सारे जो अन्य अवतारों के गुण हैं उन सब गुणों को लेते हुए, और क्योंकि साक्षात वो अवतारी हैं तो एक्स्ट्रा अपना पूरा जिसको कहते हैं ना एम्युनिशन लेकर चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं कलयुग के लिए युग अवतार बनकर. अच्छा क्यों हम इतना जोर दे रहे हैं कि कलयुग के लिए, कलयुग के लिए, क्योंकि ये कलयुग के विषय में बताया गया है. जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति पुलिस के पास जाता है शिकायत लेकर, कंप्लेंट लॉन्च करता है, पुलिस के पास जा रहा है और पुलिस को कहता है कि मैं वो एक ऐसे जगह पर गया था जहां पर पता नहीं कौन से गुंडे थे, उन्होंने मेरे को ऐसे मारा है, मैं कंप्लेंट लॉन्च करना चाहता हूं. तो पुलिस पूछता है कि कहां गए थे बताओ, तो एक पर्टिकुलर जगह बताता है कि ये जगह पर गए थे. तो अगर पुलिस ये बोल दे अरे किसने बोला था वहां जाने के लिए, क्या समझ में आता है कि पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार बहुत खतरनाक जगह है, पुलिस भी जानती है, और पुलिस ने बोल दिया कि अरे हम भी नहीं जाते, किसने बोला था तुमको जाने के लिए. तो इस प्रकार से चर्चा करते हैं कलयुग के बारे में लोग ऊपर. आपको अभी समझ में आएगा कल पॉइंट क्या है. तो जैसे पुलिस किसी को वो चौकन्ना करती कि वहां कभी मत जाना, तो वैसे कलयुग के बारे में बोला गया है कि कलयुग में जाने को किसने बोला था. इसलिए शास्त्रों में भगवान के अवतारों के विषय में बताया गया है कि भगवान त्रियुगी हैं, कलयुग लिस्ट में ही नहीं है, परंतु ये भगवान ने एक्स्ट्रा अपने आप को एक ऐसे रूप में अवतरित करवाया कि वो भगवान के भक्त बनकर आए और छिप कर आए. इसलिए छन्न अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु. कि ठीक है यदि शास्त्रों में त्रियुगी बताया गया है मुझे तो मैं अपने उस रूप में नहीं आऊंगा, परंतु मैं अपने भक्त के रूप में आऊंगा. इसलिए उनको भक्त अवतार भी बोला गया है चैतन्य महाप्रभु. क्यों? क्योंकि हम लोग का जो रेप्यूटेशन है, कलयुग निवासियों का जो रेप्यूटेशन है, उस रेप्यूटेशन के लिए और कोई तैयार नहीं हुए थे अवतार आने के लिए. एक लास्ट में कल्की आने वाले हैं और वो ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं कि ज्यादा कोई टाइम बिताएंगे यहां पर, वो अपनी तलवार लेकर एक ही काम करने वाले हैं बस, सब जगह पर काम तमाम, बस वही भाषा उस समय कलयुग के एंड में लोग समझेंगे। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने जो इतना बड़ा रिस्क लिया कि त्रियुगी भगवान को बताया गया, उसके बावजूद वो अपने एक ऐसे रूप में आए हैं। इसलिए जब श्रील प्रभुपाद भी भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के विषय में कहे हैं अपने प्रवचनों में, यही अध्याय है, इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने हर एक युग में आने के बारे में जो कहा है, तो जनरली भगवान के अवतरण के विषय में जो श्लोक बोले जाते हैं वो 4.78 यदा यदा ही धर्मस्य परित्राणाय साधुनाम, ये श्लोक बोले जाते हैं। परंतु श्रील प्रभुपाद ने अक्सर मैक्सिमम मैं देख रहा था कि जब भी उन्होंने भगवान के अवतरण के विषय में उल्लेख किया है तो उन्होंने 4.9 वो श्लोक सबसे ज्यादा यूज किया। उन्होंने कौन सा है? जन्म कर्म चमे दिव्यम 4.9। क्यों 4.9? क्योंकि उसके अंदर भगवान पर्सनली जो अपना जन्म लेते हैं और पर्सनली जो अपने कर्म करते हैं उसे तत्वतः जानने की जो बात कही गई है, श्रील प्रभुपाद इसलिए उस पर एम्फसाइज ज्यादा करते थे। तो वही अवतारी भगवान श्री कृष्ण वो गौर के रूप में आए, इसलिए हमने एक एक्रोनिम बनाया है GAURA गौर। जी स्टैंड्स फॉर चैतन्य महाप्रभु इज जेनरस, ए स्टैंड्स फॉर अफेक्शनेट, यू स्टैंड्स फॉर अनअज्यूमिंग, आर स्टैंड्स फॉर रेनाउंस्ड, अगेन ए स्टैंड्स फॉर द मोस्ट एक्सेसिबल ऑफ ऑल अवतार्स। तो हम एक एक कर चैतन्य महाप्रभु के इन गुणों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जी गौर, चैतन्य महाप्रभु का ये जो नाम है तो उसमें से जो जी है अर्थात नमो महावदन्याय, चैतन्य महाप्रभु को एक ऐसा व्यक्ति बताया है जैसे कि कोई वदन्याय का अर्थ होता है कि जो बहुत दानशूर हो, दानवीर हो, परंतु महावदन्याय चैतन्य महाप्रभु को कहा गया है कि वो साधारण प्रकार के दानवीर नहीं बनकर आए, वो उन्होंने एक ऐसा दान दिया कि अनार्पित चरिम चिरात, कभी किसी ने अर्पित ऐसा दान कभी किसी ने नहीं दिया किसी को। तो अब सबसे पहले जब हम दान की चर्चा कर रहे हैं, सो वी हैव टू रीडिफाइन व्हाट इज ट्रूली वैल्यूएबल। जैसे कि हर एक व्यक्ति के जीवन में उसके लिए अलग अलग प्रकार की चीजें मूल्यवान हो सकती हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि सबके लिए संपत्ति या धन वही मूल्यवान है। जैसे मान लो कि किसी को कोई जानलेवा बीमारी हो गई है और उसके जानलेवा बीमारी की कोई जड़ी बूटी किसी ऐसे देश में, उसके जंगल में, उस देश के जंगल में किसी पेड़ के ऊपर उग रही है, तो ये व्यक्ति जिसको जानलेवा बीमारी हो गई उसके लिए सबसे मूल्यवान क्या है? वो जड़ी बूटी कौन से प्रदेश के जंगल के उस पेड़ से मिलना सबसे मूल्यवान उसके लिए वो है। तो यदि कोई उसको वो लाके देगा तो उसके लिए सबसे बड़ा दानवीर वो हो गया। यदि कोई किसी अकाल पीड़ित जगह पर भूखा है उसको जाकर अगर कोई दान में डिजाइनर कपड़े जाकर दे रहा है, ये लो डोल्चे गबाना का कपड़ा, ये लो तुम पहनो, डिजाइनर कपड़े तुमको मैंने दिए, अरे उसको भूख लगी है, उसको वो डिजाइनर कपड़ों से वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होगा। तो कहने का मुद्दा क्या है कि जो सबसे जरूरत की चीज है वो जब दान दी जाए, दान के रूप में दी जाए, तब उसका मूल्य सबसे ज्यादा माना जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि हम सब किसके भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं। इसलिए उनका नाम क्या है? महाप्रभु, है ना, चैतन्य महाप्रभु। तो महाप्रभु का अर्थ क्या है? प्रभु हैं कृष्ण, भगवान कृष्ण को उल्लेख किया गया है प्रभु। तो ये महा क्या है? उन्होंने श्रीमती राधा रानी का भाव लिया है, और राधा रानी का भाव कौन सा है? महाभाव। तो जो राधा रानी के महाभाव को प्रभु लेकर आए वो बने महाप्रभु। और वो देने के लिए हमें, क्योंकि हम सब अंततः उस प्रेम के भूखे हैं, हम उस प्रेम के खोज में हैं जो कि शुद्ध अहैतुक प्रेम है। अब ये जो हमारा भवरोग है इस संसार में, जिसके वजह से हम वो जो प्रेम है उसको पहचान नहीं पा रहे, तो दो लेवल के हमारे भवरोग हैं। पहला लेवल क्या है कि भगवान को भूले हुए हम लोग जो भटक रहे हैं इस भौतिक संसार में, ये एक रोग है। तो यदि एक साधारण रोग का उदाहरण हम दें कि किसी को, भगवान न करे, कैंसर हो गया किसी को, अब ये एक लेवल है कि उसे कैंसर है, परंतु इससे ज्यादा दयनीय बात क्या हो सकती है कि उसे पता ही नहीं उसको कैंसर है। ज्यादा खतरनाक क्या है? यदि पता चल जाए तो कम से कम ट्रीटमेंट हो फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे उसका ट्रीटमेंट कर उसको ठीक किया जा सकता है, परंतु कैंसर है पता ही नहीं है उसे। तो ये जो सेकंड लेवल है भवरोग का, ये और भी डेंजरस है। तो ये मैं क्यों उदाहरण दे रहा हूं कि संसार में हम लोग जो भगवान को भूले हुए त्रस्त बीमार अवस्था में, आध्यात्मिक रूप से बीमार वो तो है ही, और कितने ऐसे निष्फिखर घूम रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। अभी आप थोड़ा एक अगर परीक्षण करो, बाहर जाकर किसी को जाकर बोलो, आपको पता है आप बीमार हैं, आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं आप, वो पागल बोलेगा, पुलिस को बुलाएगा, ये पागल हो गया, ये भगवान को भूले हुए आप यहां पर आध्यात्मिक रूप से पीड़ित हो। तो लोगों को यदि बताया भी जाए कि उसके लक्षण क्या है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं कि वो बीमार है। जैसे कि प्रभुपाद से मिलने के लिए एक बार एक साइकियाट्रिस्ट आया, तो डिवोटीज उसको लेकर आए प्रभुपाद से मिलने के लिए। उस समय क्या है, डिवोटीज जो भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा या थोड़ा इन्फ्लुएंशियल उसको प्रभुपाद के पास ले आते थे। तो ये आया प्रभुपाद से मिलने के लिए साइकियाट्रिस्ट, और प्रभुपाद तिलक लगाकर तैयार होकर आ रहे थे। तो जब प्रभुपाद आए तो ये साइकियाट्रिस्ट ने क्वेश्चन क्या पूछा, ही इज अ पेशेंट, क्योंकि उसकी आदत क्या थी, उसको कहीं पर भी कोई बुलाता तो पेशेंट को ही देखने जाता था, तो वो प्रभुपाद को पेशेंट के रूप में देख रहा था। और फिर जब प्रभुपाद के साथ वार्तालाप उसका हुआ, उसके पश्चात एक घंटे के वार्तालाप के पश्चात उसको समझ में आया, अरे मैं पेशेंट हूं, आई एम द पेशेंट। अब हम लोग देखो डेमोक्रेटिक कंट्री में है ना, ज्यादातर जो बड़े बड़े देश हैं वो लोग भी किसका पालन करते हैं, डेमोक्रेसी का पालन करते हैं। इसलिए इस संसार में जो दुख हैं, मिजरी हैं, वो भी डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक मतलब इट इज फॉर एवरीवन एंड एनीवन। कोई जैसे कि डेमोक्रेटिक कंट्री में सबके लिए सब कुछ उपलब्ध है, वैसे मिजरी इस भौतिक संसार में, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम माया मयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नाम एव केवलम। इस श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मलोक से लेकर स्तंभ पर्यंतम, कहां तक कि एक कोई घास का तिनका, वहां तक सब जगह पर जो दुख हैं वो समान रूप से सबको मिले हुए हैं। देखो, कोई बहुत अमीर है, वो इतनी दौलत अर्जित कर लिया है कि उसको इतनी दौलत अर्जित करने के वजह से नींद नहीं आ रही, अरे कोई लूट ले जाएगा, अरे पता नहीं कब से नोटबंदी हो जाएगी वापस से, नोट इतने हैं उसके वजह से नींद नहीं आ रही है, और एक है जिसके पास नोट नहीं है उसके वजह से उसको नींद नहीं आ, दोनों की नींद उड़ी हुई है, इसलिए मिजरी इज डेमोक्रेटिक। अब देयर इज समथिंग कॉल्ड हॉरिजॉन्टल हैप्पीनेस। हॉरिजॉन्टल हैप्पीनेस मतलब हम लोग सब हॉरिजॉन्टली हैप्पीनेस ढूंढते हैं, अरे मैं यहां चला जाऊं, मैं अमेरिका चला जाऊं तो मैं प्रसन्न या खुश हो जाऊंगा, मैं सुख खुशी हो मेरे को मिलेगी, मैं इधर चला जाऊंगा उधर चला जाऊंगा तो उसके अंदर तो हम लोग मैं अगर इसको पहचान लूंगा, अगर इसमें मेरे को नौकरी मिल गई, ये वो, तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं तो वो हमको क्या दे रहे हैं, वर्टिकल वर्टिकल हैप्पीनेस, मतलब रस्सी दिए हैं, अब पकड़ो उसको और ऊपर आओ हेलीकॉप्टर में। सो देयरफॉर व्हेन वी लुक फॉर वर्टिकल हैप्पीनेस देन दैट हैप्पीनेस इज समथिंग विच विल बी परमानेंट। तो ये है जेनरोसिटी चैतन्य महाप्रभु की। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू गिव दैट इज इंपॉर्टेंट बट व्हेन यू गिव। चैतन्य महाप्रभु कितना टाइमली अवतरित हुए हैं कलयुग के अंदर कि कलयुग के शुरुआत में अवतरित हुए, क्योंकि कलयुग के शुरुआत में थोड़ा बहुत हमारे अंदर संस्कार हैं समझने के लिए। अभी तक हम लोग, हालांकि चैतन्य महाप्रभु 500 साल बीत चुके हैं उनके अवतरण के, लेकिन अभी भी कलयुग का प्रकोप इतना नहीं है, इतनी तादाद में तो बैठे हैं और थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा है ना, क्योंकि कलयुग की बुद्धि, कलयुग ने अभी तक इतनी हमारी बुद्धि को कुबुद्धि नहीं बना पाया, इसलिए समझ में भी आ रहा है। और कितने अपना रहे हैं, जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने जो किया, इतने लोगों ने अपनाया है, ये इसीलिए अपनाया है क्योंकि दोनों मिक्सचर है। तो दोनों का मिक्सचर है, एक है कि हमारे थोड़े बहुत संस्कार जो कि पिछले युगों के एक स्पिल ओवर जिसको बोल सकते हैं, जैसे कि पिछला युग जो है द्वापर युग, द्वापर युग के अंदर जो भौतिकता का प्रकोप जो था उसकी शुरुआत हुई थी, और अब इस कलयुग में, मतलब आके जब एंड कल की आने वाले हैं वो तो 432,000 साल जब एंड होंगे, और अभी तो केवल 5,000 साल बीते। तो अगर वो स्पैन देखो आप कलयुग का कि स्पैन कितना है, और उसके अंदर हम लोग, हमारे जो भी कुछ सौभाग्य के वजह से हम लोग पहले पैदा हो गए, और इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि चैतन्य महाप्रभु रिसेंटली अवतरित हुए हैं। क्यों रिसेंटली बोल रहे हैं, क्योंकि कलयुग का स्पैन कितना है, 432,000, इसलिए टाइमिंग बहुत जरूरी है। किसी को भी आप अगर दान दे रहे हो तो उसको क्या समय पे दान दे रहे हो, जैसे हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में वहां पर जो डिनर बनता था रोज, अभी भी उनका वो एक नियम है कि 8 बजे तक जो ब्रह्मचारी के लिए डिनर है 8 बजे तक सर्व होगा, और 8 बजे के बाद फिर वो डिनर जो बच गया, खिचड़ी या सांभर चावल जो भी बच गया उस दिन का, वो भिखारियों को बांटते थे। तो कई बार होता था कि कोई बांटने वाला नहीं होता था तो लेट हो जाता था बांटने में, अब वो भिखारी सब बाबुलनाथ मंदिर जो हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के पास में है, तो वहां पर वो लाइन से भिखारी बैठे रहते थे बाबुलनाथ मंदिर के सामने। तो कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग प्रोग्राम से आए और वो डिनर बाहर चला गया बटने के लिए, तो हम भी प्लेट लेके चले जाते थे बाबुलनाथ, क्योंकि अभी और कोई चारा नहीं है, वो सीधा नेक्स्ट डे सुबह आपको नाश्ता मिलेगा, तो फिर इसलिए हम लोग भी प्लेट लेके चले जाते थे। मैं कई बार गया हूं। अब मैंने देखा वहां पर लंबी लाइन वो भिखारियों की, तो खिचड़ी बांटने वाले कई वो उधर के जो बर्तन साफ करने वाले वही खिचड़ी ले जाते थे बांटने के लिए। तो कई भिखारी मेरे को बोलते थे, महाराज लाइन में बैठो ना, लाइन में बैठो। तो ठीक है, हम भी उनकी लाइन में बैठ जाते थे, और कई बार उनके रिस्पांस, साक्षात उनके रिस्पांस देखने सुनने मिलते थे। तो कई भिखारी वो लोग देखते थे, क्या खिचड़ी आज भी, हाँ अरे आज ट्यूसडे है, सांबर चावल बनता है आपके इधर, वो नहीं लाया। उनको सब पता है कौन से दिन क्या बनता था मंदिर के अंदर, फिर से आज क्या किसे खिचड़ी बनाया आपने, इतना लेट आता है, 10 बज गया अभी, हाँ। हम लोग दिसंबर के मैराथन में बुक टेबल लगाने के लिए मलाड़ में वो एक जो एक हनुमान का मंदिर है स्टेशन के पास ही है, तो वहां पर गए थे। तो हनुमान जी का मंदिर, तो मैं जगह देख रहा था, सैटरडे का दिन था, बहुत अच्छी भीड़ होती है, तो मैं जगह देखने के लिए कि कहां पर हमारे भगवत गीता का टेबल हम लगाएंगे, तो एक जगह पर थोड़ी सी खाली जगह दिखी मुझे, तो उधर एक भिखारी बैठा हुआ था। तो मैंने भिखारी को देखा, भिखारी ने मुझे देखा, तो अभी और कोई उधर था नहीं, ना तो कोई वहां पे कोई सिक्योरिटी गार्ड था, ना कोई वो मंदिर के कोई मैनेजर ऑर्गन कोई ना व्यवस्थापक दिख रहे थे। तो मैंने फिर उस भिखारी को पूछ लिया कि ये रोज बैठता होगा शायद यहाँ पे, इसको पता होगा। तो मैंने भिखारी को पूछ लिया कि वो बगल वाली जगह खाली है, तो उसने देखा, पहले ऊपर से नीचे देखा, फिर नीचे से ऊपर देखा, बैठ जाओ। तो बंबई में भिखारियों का ये बड़ा, जैसे बॉम्बे में जो हाजी अली है, हाजी अली बहुत फेमस है, बहुत वाइड रेंज, अलग अलग प्रकार के जो ब्रांडेड भिखारी वहां पे आपको मिलेंगे। जैसे एक बार हाजी अली में एक भिखारी वो भीख मांग रहा है, एकदम स्टाइल में बोलता है, बाबू बाबू 100 रुपए दे बाबू, डायरेक्टली रेट क्या है, 100 रुपए मांग रहा है, ए बाबू 100 रुपए दे बाबू। तो बाबू ने पीछे मुड़ के देखा, वाह भैया क्या तुम्हारा रेट है, 100 रुपए, 100 रुपए क्यों चाहिए, फोन रिचार्ज कराना है बाबू। बोला ले, बड़ा तू स्टैंडर्ड का भिखारी यार, फोन रखता है तू, सेलफोन रखता है क्यों, बाबू गर्लफ्रेंड से बात करनी है। ये और ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया, एक तो फोन वो भी रिचार्ज करना है 100 रुपए का, गर्लफ्रेंड बना रखी है तूने भिखारी हो के, नहीं बाबू गर्लफ्रेंड ने भिखारी बना दिया। तो चैरिटी जो है उसका एक टाइमिंग होता है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो अवतरित हुए, परफेक्ट टाइमिंग उनका। चैरिटी इज मोस्ट वैल्यूड ड्यूरिंग कैलामिटीज, कि जब कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति होती है उस समय जब कोई दान देता है। इसलिए इस कलयुग, पूरे कलयुग को इमरजेंसी युग बताया गया है, आपातकालीन। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु यहां पर कुछ देने आए हैं, तो वो सबसे ज्यादा उसको वैल्यू या मान्यता मिलती है। अब देखो यहां पर ये किसकी कैलामिटी क्या है, कलामिटी ये नहीं है कि यहां पर जो बाकी के जो भौतिक रूप के ताप हैं उसके वजह से हम लोग तरसते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कि कलयुग में जो अध्यात्म को लेकर अज्ञान है वो सबसे बड़ी कलामिटी है कलयुग की, अध्यात्म को लेकर अज्ञान। बाकी ज्ञान बहुत है। जैसे एक हमारे इस्कॉन के प्रीचर हैं, वो रशिया में लेक्चर दे रहे थे, रशियनी है वो, तो रशिया में लेक्चर दे रहे थे और उन्होंने लेक्चर में कह दिया, जैसे बेसिक फिलॉसफी हमारी, तो उन्होंने कह दिया यू आर नॉट दिस बॉडी। तो ऑडियंस में जब क्वेश्चन आंसर सेशन चालू हुआ तो ऑडियंस में से एक रशियन वो पूछता है यू सेड आई एम नॉट माई बॉडी सो हूज बॉडी एम आई। अभी लेवल देखो क्या है कि किसी ना किसी का तो शरीर होना ही है मेरे को, अगर मैं मेरा शरीर नहीं हूं तो किसका हूं। तो सोचो कि इस लेवल तक, मतलब कलयुग में हम लोग, मतलब भौतिक बुद्धि भी इतनी कम होती जा रही है। एक टीचर ने स्टूडेंट को पूछा चांद पर पहला कदम किसने रखा, स्टूडेंट कहता है नील आर्मस्ट्रांग। सही जवाब दिया, नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम रखा। टीचर पूछती है दूसरा कदम किसने रखा, उसने रखा होगा, लंगड़ी खेलने थोड़ी गया था उधर। तो ये तो हमारा लेवल है कलयुग में। इसलिए नेक्स्ट ए स्टैंड्स फॉर चैतन्य महाप्रभु इज द मोस्ट अफेक्शनेट ऑफ ऑल अवतार्स। व्हाई ही इज द मोस्ट अफेक्शनेट, ये कारण है चैतन्य महाप्रभु वो राधा रानी के भाव को लेकर आए हैं। राधा भाव द्युति सुविलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। अब बाकी जो भी अवतार हैं उनके साथ उनकी अंतरंगा शक्ति आई, जैसे रामचंद्र जी के साथ सीता आई, भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी और रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि। परंतु चैतन्य महाप्रभु वो राधा रानी को अपने रूप, अपने अंदर उसके उनके भाव को लेकर आए। तो इसलिए राधा कृष्ण नाही अन्य, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। और जब श्रीमती राधा रानी का भाव बांटने के लिए वो निकल पड़ते हैं संन्यास लेते, तब वो जिसको भी, क्योंकि राधा रानी उनकी जो कृपा है, भगवान श्री कृष्ण वो स्ट्रिक्ट होते हैं बहुत बार, बहुत उनके नियम है कि ऐसे 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 तब जाकर मेरी कृपा मिलेगी। जैसे हमने कुछ बुधवारों पहले चर्चा की थी कि जब राधा रानी और उनके उनका डिपार्टमेंट कौन सा है, भक्ति देने का डिपार्टमेंट, भगवान के कृष्ण का प्रेम देने का जो डिपार्टमेंट है राधा रानी का, तो वो जब निर्धारित करती हैं कि मुझे इसे देना है उसे देना है, तो भगवान श्री कृष्ण भी मना नहीं कर सकते। इसलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हम लोग श्रीमती राधा रानी के अनुयायी बनना चाहते हैं, क्योंकि वहां से ही भगवान श्री कृष्ण वो हम पर थोड़ी नजर रखेंगे, नहीं तो कोई स्कोप नहीं है। डायरेक्टली जाएंगे तो सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाने वाले हैं वहां पर। इसलिए श्रीमती राधा रानी, जैसे कि होता है ना किसी घर में भी, जब रिपोर्ट कार्ड साइन करानी है, पिताजी से साइन कराना है, तो मम्मी को साथ में लेता है ना। हमें घर बचपन में हमको याद है जब हमारे पिताजी हमको होमवर्क कराते थे, वो भी मैथमेटिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का होमवर्क कराते थे, तो हम लोग देखते थे कि माँ है ना घर पे, क्योंकि जब भी पढ़ेगी वो होमवर्क कराते समय जब पढ़ेगी तो वो बचाने के लिए वहां पर होनी चाहिए। और अगर कई बार हमारी माँ वो सब कुछ वो चौका करने के बाद निकल जाती थी बाहर रात के घूमने के लिए, और फिर केवल मैं और पिताजी, तो वो कैसा लगता था? जैसे कि शेर के पिंजड़े में एक बकरी. सो मदर्स आर ऑलवेज कंपैशनेट. देयरफॉर द अफेक्शन ऑफ चैतन्य महाप्रभु इज बिकॉज ऑफ दैट बीइंग सो अफेक्शनेट. इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने, देखिए हरिदास ठाकुर, अब हरिदास ठाकुर ये एक यवन परिवार में पैदा हुए, अर्थात एक मुसलमान परिवार में पैदा हुए, एज अ मुस्लिम ये पैदा हुए. परंतु चैतन्य महाप्रभु का स्नेह हरिदास ठाकुर के प्रति इतना था कि एक तो नामाचार्य बनाया इनको, मतलब जो युग धर्म लेकर आए चैतन्य महाप्रभु उस युग धर्म का नामाचार्य बनाया एक ऐसे व्यक्ति को जो कि एक साधारण हिंदू परिवार में भी नहीं पैदा हुआ है. ब्राह्मण तो छोड़िए, हिंदू परिवार में नहीं पैदा हुआ. और जब हरिदास ठाकुर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर का शरीर लेकर अपने हाथों में उठाकर उनके पूरी अंतिम क्रिया अपने हाथों से करी, उनको नहलाया, उनके मृत शरीर को अपने हाथों से नहलाया जगन्नाथपुरी में. और फिर हरिदास ठाकुर के शरीर को लेकर उन्होंने नृत्य किया. अब देखिए ये उनके अंदर जो राधा, क्योंकि हरिदास ठाकुर वो जो भगवान श्री कृष्ण और उनके हरिनाम से इतना प्रेम करते थे, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के हृदय में जो श्रीमती राधा रानी का भाव, वो हरिदास ठाकुर के कृष्ण प्रेम को देखकर इतना पिघल जाता था कि वो अपनी भाव विभोर अवस्था में चले जाकर बाह्य अवस्था को भूल जाते थे. अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जब कोई किसी से स्नेह करता है या स्नेह दिखाता है तो जनरली हम क्या देखते हैं कि जो अपना होता है उसको ज्यादा स्नेह दिया जाता है कि अरे ये मेरा बेटा है. अगर हमने माँ बेटे की भी उदाहरण भी लें तो माँ जनरली मेरा बेटा है, चाहे वो कितना भी निखट्टू हो और चाहे वो कितना भी बड़ा हो गया हो. मुझे याद है एक बार एक फैमिली ने मुझे प्रसाद पर बुलाया था, तो जो व्यक्ति ने मुझे बुलाया था वो मेरी उम्र का, तो उनकी मदर सर्व कर रही है और उनकी मदर वो चपाती ला रही है गर्मा गर्म डायरेक्टली स्टोव से, उसमें और एक्स्ट्रा घी लगाकर अपने बेटे को खिला रही है. बेटा 40 साल का, बेटे को खिला रही. तो उसको इतना शर्मिंदा टाइप लग रहा था वो कि अरे ये प्रभु जी के सामने ये मेरे को ऐसे क्यों खिला रही है. तो बोल रही है, वो बोल रहा था अपनी माँ को कि अरे प्रभु जी को दो. और मेरे लिए उन्होंने कैसरोल के अंदर चपाती पहले से बनी हुई रखी हुई थी, तो वो मेरे बगल में रख दी उन्होंने कि आप वहां से लेते रहना. लेकिन वो अपने बेटे को और घी एक्स्ट्रा डाल के, और मेरे को बोल भी रही है क्या है मेरा बेटा, बचपन से उसको आदत है वो घी वाली गर्मा गर्म चपाती खाने की, उसको आदत है. मतलब उसको बोलने का मतलब ये था आपको तो उसकी आदत होगी ना, तो आप तो खा लो. तो मैंने कहा, मैं तो कुछ बोल नहीं रहा, मैं उसको बोला कि कोई बात नहीं, अरे वो इतना प्रेम दिखा रही है आपको. अरे प्रभु जी इतना एम्बेरसिंग है, मेरे को लग रहा है अंदर जाके किचन में झगड़ा चल रहा है, चपाती से ज्यादा गर्म ये हो रहा है. लेकिन मैं देख रहा था कि कैसे स्नेह जो है जनरली जो जिससे रिश्ता बना हुआ है उसके प्रति, परंतु चैतन्य महाप्रभु उन्होंने किन किन को महाभाव राधा रानी का दिया. एक कथा है कि चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे जब अपने एक्सटेसी में कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो उन्होंने देखा एक धोबी, अब वो कपड़े धो रहा है जो उसका व्यवसाय है, तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको बोला भगवान हरि का नाम लो. तो उसने कहा कपड़े कौन धोएगा, है ना. जनरली अभी भी क्या होता है, आप जाकर किसी को हरि नाम लेने बोलो तो यही बोलता है काम कौन करेगा. तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम हरि का नाम लो, ये कपड़े मैं धोता हूं. और केवल बोला नहीं, चैतन्य महाप्रभु कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अवतारी हैं, वो कपड़े धोने लगे, और ये भी ये धोबी के कपड़े नहीं थे, पता नहीं किसके मैले कपड़े, कौन से बद्ध जीव के मैले कपड़े चैतन्य महाप्रभु धो रहे हैं, और इसको बोल रहे तू बैठ के हरिनाम ले। तो इसने देखा कि भाई ये हरिनाम लेने से मेरा काम भी हो रहा है मुफ्त में, और अच्छा काम कर, अच्छा धो रहा है, मुझसे भी अच्छा धो रहा है। तो देखिए उनके अंदर अफेक्शन क्या क्या लेवल का अफेक्शन था, कि उन्होंने ये नहीं देखा कि ये व्यक्ति मेरा भक्त है या नहीं, ये व्यक्ति मुझसे संबंधित है या नहीं, या मेरे निकट का किसी मेरे खानदान का है या नहीं, अनजान। और ऐसे ऐसे लोग जो कि चैतन्य महाप्रभु जो भगवान को भूले हुए इस भौतिक संसार में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको जा जाकर उन्होंने राधा रानी का वो महाभाव दिया। नेक्स्ट, यू स्टैंड्स फॉर चैतन्य महाप्रभु इज अनअज्यूमिंग, अर्थात नम्रता, उनकी विनम्रता। अब केशव कश्मीरी, ये एक ऐसा पंडित आया था नवद्वीप में कि पूरे उत्तर भारत में, और ये भी बताया गया है कि जो जहां कहीं पर भी वो जाता था भारत में, किसी भी राज्य में जाता था, तो वहां पर उसके पास एक विजय पत्र था, और कई लोग तो उसके विद्वत्ता से इतने डरे हुए थे, बड़े बड़े विद्वान पहले ही साइन कर देते थे, परंतु निमाय पंडित, अब ये उस समय छोटे से थे चैतन्य महाप्रभु, इनका नाम निमाय पंडित, और वो अपने विद्यार्थियों के साथ, सहपाठियों के साथ गंगा के तट पर बहुत बार वो जब खेलते रहते थे, परंतु उनको पंडित का जो स्तर दिया था, जो टाइटल दिया था, क्योंकि वो फेमस थे कि न्याय जो है इनके अनुसार कोई न्याय का प्रदर्शन नहीं कर सकता। तो केशव कश्मीर में सुना था, तो गंगा के तट पर देखा उसने कि इसमें से कोई निमाय है, ये निमाय पंडित। तो जब पता चलता है उसको कि ये निमाय पंडित जो है यहां पर सबसे फेमस है एज अ लॉजिशियन, न्याय शास्त्र वाला, तो डिबेट करने के लिए वहां पर, तो पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम निमाय पंडित हो, वो प्रख्यात। तो वो कहते हैं कि लोग मुझे पंडित बोलते हैं, मैं कोई पंडित वगैरह नहीं हूं, मैं निमाय हूं, खाली निमाय हूं मैं। उनकी विनम्रता अभी समझ में आएगी कि उनकी विनम्रता ये कैसे प्रदर्शित हुई। तो फिर जब उन्होंने उनका विवाद चालू हुआ, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा, मैंने भी आपके बारे में बहुत सुना है, तो हम गंगा के तट पर है, आप गंगा के विषय में कुछ स्तुति कीजिए। तो ओरिजिनल वर्सेस, किसी के पुराने श्लोक नहीं रट कर आया था केशव कश्मीरी, ओरिजिनल 100 कितने 17 उधरी स्पॉन्टेनियस उसने कंपोज किए संस्कृत के गंगा की स्तुति में, और रफ्तार से कैसे, जैसे कि गंगा बहती है ऐसी रफ्तार से उसने 100 श्लोक गंगा के गुणगान में बोल दिए, और सारे वहां पर बहुत चक्का रह गए, बाकी जो निमाय पंडित के सहपाठी ये देखकर सुनकर। और फिर उसने जब पूरे 100 श्लोक बोल दिए, तब फिर निमाय पंडित कहते हैं, तो अब मैं बताऊं कहां पर आप गलत थे, इसने आज दिन तक किसी के मुंह से ये बात सुनी नहीं थी, वो भी एक छोटा सा लड़का, उसकी ऐसी जरूरत कि मुझे ये पूछ रहा है कि मैं गलती बताऊं कहां पर, गलती हो सकती है मेरी केशव कश्मीरी, मुझ जैसे पंडित की गलती भी हो सकती है। और फिर निमाय पंडित वो कहते हैं कि हां, सबसे पहले तो आपका जो 64वां श्लोक था, 64वां श्लोक रिपीट किया चैतन्य महाप्रभु, मतलब उनको याद हो गया इसने बोला, और गंगा के बहने की रफ्तार से बोला था, चैतन्य महाप्रभु को 64वां श्लोक याद हो गया, बोल दिया उसमें जो तुमने भवानी भर्तु, ये लाइन वो गलत है, वो व्याकरण के अनुसार ठीक नहीं है, क्योंकि भवानी कौन है, भव के जो पत्नी है पार्वती, फिर तुमने कहा है भर्तु, भर्तु मतलब मेंटेनर ऑफ भवानी। तो भवानी भर्तु का अर्थ क्या होगा? हस्बैंड ऑफ पार्वतीज शिवा, पार्वती हु इज दी वाइफ ऑफ शिवा। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि पार्वती के दो हस्बैंड हो गए। तो निमाय पंडित ने ये जब नुक्स निकाला तो केशव कश्मीरी अब ये बहुत चक्का रह गया कि एक तो नंबर याद है, श्लोक का नंबर याद है, पूरा श्लोक याद है, उसके अंदर मैंने जो गलती करी है समझ गया उसने, ये भवानी भर्तु गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो जाता है उस शाम को रात को वो अपनी सरस्वती माँ उनको पुकारता है कि आपने तो मुझे वरदान दिया था कि कोई व्यक्ति मुझे हरा नहीं पाएगा। सरस्वती माँ प्रकट होती है और कहती है कि हाँ, क्योंकि ये कोई इंसान नहीं है, जिसने हराया ना वो मेरे भर्तु के भी भर्तु हैं। सरस्वती वो किनकी पत्नी है? ब्रह्मा जी की पत्नी है, और ना ये ब्रह्मा जी के भी बाप है। तो मेरे पति के जो बाप हैं ये, उन्होंने तुमको हराया तो तुम अपना सौभाग्य मानो। फिर आगे चलकर केशव कश्मीरी वो इनके शिष्य बनते हैं निमाय पंडित के। परंतु निमाय पंडित वहां पर जब सब हंसने लगते हैं तो निमाय पंडित सबको शांत करते हैं। सो चैतन्य महाप्रभु ही करेक्टेड निमाय, करेक्टेड केशव कश्मीरी। He defeated Keshav Kashmiri but never dishonored him. ये उनका कल्चर था। फिर उन्होंने खुद एक न्याय के ऊपर पुस्तक लिखी थी, और बचपन के ये इनकी घटना है कि उनके एक मित्र, उन्होंने भी न्याय पर एक पुस्तक लिखी थी, और दोनों नाव में बैठे हुए चर्चा कर रहे थे अपनी पुस्तक के बारे में। तो उनके मित्र ने, निमाय पंडित के मित्र ने कहा कि मैंने न्याय के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, मैं दिखाना चाहता हूं। और फिर चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित के रूप में बोले कि मैंने भी लिखी है। तो जब इनके मित्र ने निमाय पंडित के न्याय की पुस्तक देखी तो मायूस हो गए, वो मुरझा गया चेहरा कि अब मेरी पुस्तक कौन पढ़ेगा, ये लेवल की तुमने लिखी है पुस्तक। तो वहीं पर निमाय पंडित ने अपनी पुस्तक गंगा में बहा दी, एक ही कॉपी थी उसकी, गंगा में बहा दी। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अनअज्यूमिंग ह्यूमिलिटी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। और फिर ये इतना बड़ा सन्यासी जिसके 60,000 शिष्य थे, प्रकाशानंद सरस्वती, जो कि बनारस में जो मायावादी जो उसका पीठ था उसका ये प्रमुख, और चैतन्य महाप्रभु अपनी नम्रता से प्रकाशानंद सरस्वती को वो उनका हृदय परिवर्तित किए। अब रामानंद राय ये एक चैतन्य महाप्रभु के ऐसे पार्षद बने जो कि गृहस्थ थे और चैतन्य महाप्रभु सन्यासी। हम हाल ही में इस पर चर्चा कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु इनसे मिले और सबके सामने खुले में इनसे आलिंगन इनको किया और भाव विभोर अवस्था में जो आपस में इनका संवाद हुआ। तो रामानंद राय एक शूद्र परिवार में पैदा हुए और एक गृहस्थ, और चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए और एक सन्यासी। तो दोनों वर्ण और आश्रम के दृष्टिकोण से चैतन्य महाप्रभु सबसे ऊंचे दर्जे के थे, ब्राह्मण भी और सन्यासी भी। और यहां पर वो रामानंद राय के सामने बैठकर सुन रहे हैं कि आप मुझे कृष्ण तत्व के बारे में कहो। तो जिन सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, केशव कश्मीरी को जिन्होंने परास्त किया अपनी विद्वत्ता से, वो रामानंद राय के सामने नम्रता से जैसे एक विद्यार्थी बैठता है बैठ के सुने। दिस इज दी अनअज्यूमिंग क्वालिटी ऑफ श्रीमान गौरांग महाप्रभु। आर स्टैंड्स फॉर बीइंग रिनाउंस्ड। अब देखिए, जो वैराग्य किसी के जीवन में होता है वो किस पर आधारित होता है? वैराग्य आधारित होता है कि उसके उसके पास कुछ ऐश्वर्य है जिसको उसने त्यागा। अब अगर किसी के पास कुछ है ही नहीं त्यागने के लिए, जैसे अगर कोई भिखारी है, बंबई में जो दादर का ब्रिज है ना, वहां पर बहुत जो भिखारी ऐसे बैठते हैं जिनको बहुत, वहां वो बहुत प्राइस्ड प्लेस है दादर का ब्रिज। तो एक भिखारी अपनी बेटी की शादी कर रहा था, दादर के ब्रिज पे बैठा हुआ भिखारी अपनी बेटी की शादी कर रहा है, तो उसको दूसरा भिखारी पूछता है कि भाई तू दहेज में क्या दे रहा है तेरे दामाद को, तो कहता है ये दादर का ब्रिज। तो समझ लो कि दामाद भी क्या। तो अगर कोई भिखारी कह रहा है कि मैं दहेज में मेरे दामाद को ये पूरा दादर का ब्रिज दे रहा हूं, तो क्या समझा जाएगा, अरे तुम्हारे पास है क्या देने के लिए। तो वैसे ही अगर कोई इस भौतिक संसार में सन्यासी बनता है तो क्या त्यागा है उस सन्यासी ने। परंतु चैतन्य महाप्रभु का जो सन्यास वो सराहनीय है, क्योंकि ये परम भोक्ता है। जो परम भोक्ता है, षड ऐश्वर्य पूर्ण है, वो अपने सारे ऐश्वर्यों को त्याग कर जब वो सन्यासी बनते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है सन्यासी शिरोमणि, कि सन्यासियों में जो शिरोमणि हुए। इसलिए जो छह ऐश्वर्य हैं उनके अंदर अंतिम छठा ऐश्वर्य वैराग्य, और वो चैतन्य महाप्रभु ने अपने इस अवतार के रूप में दिखाया। अब इस संसार के सारे जो सुख हैं, चैतन्य महाप्रभु दिखने में सबसे सुंदर, उनकी पत्नी जो अभी नवविवाहिता वो इतनी सुंदर साक्षात लक्ष्मी, और उनकी माँ जो सभी माओं का प्रेम यदि एक में डाल दो तो एक तिनके के समान, एक कण के समान होगा जो शशि माता का प्रेम चैतन्य महाप्रभु के प्रति। तो ऐसे रूप, ऐसी विद्वत्ता, ऐसी सुंदरता, ऐसा प्रेम, ऐसे पत्नी माँ, इनको छोड़कर जो उन्होंने सन्यास लिया, इसलिए हमने यहां पर क्या कहा गया, He renounced all pleasures to give us the all pleasurable. This is the beauty of Chaitanya Mahaprabhu's sannyas. This is the opulence of Chaitanya Mahaprabhu's renunciation. और फिर finally accessibility. हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत फेमस हो जाता है, चैतन्य महाप्रभु बहुत उस समय, मतलब अभी जैसे क्रिकेटर्स फेमस हैं, बॉलीवुड के स्टार फेमस हैं, है ना। जैसे मैं जयपुर से आ रहा था एक बार, तो एक ऐसी शख्सियत आई वो प्लेन के अंदर, मैं तो नहीं जानता था, मेरे बगल में आके बैठ, तो पूरा प्लेन के पैसेंजर ऐसे, ये हमारे प्लेन में, ये हमारे प्लेन में। तो मुझे समझ रहा था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मैं तो नहीं जानता था, लेकिन वो विंडो सीट में, मैं मिडिल सीट में बगल में बैठा हुआ था। ऑटोग्राफ, ये वो, लोग आ रहे हैं, इतनी भीड़ आ रही, कोई अपने सीट पे बैठ ही नहीं रहा है, सब लोग हलचल मच रही है। तो मुझे समझ में आ गया कि भाई मैं फंस गया यहाँ पे। तो फिर मैं उठ के, बहुत सी लड़कियां थी, वो लोग तो ऐसे जैसे कि कूद जाएंगे अभी प्लेन से, क्या देख लिया हमने, ऐसे करके। तो मैंने उनको कहा आप बैठ जाओ, मैं और कहीं चला जाता हूँ। तो ये जो भी एक्टर था, इसने कहा नहीं नहीं स्वामी जी, आप इधर ही बैठो। तो फिर मुझे बिठा दिया जबरदस्ती, उसने भी प्लेन उड़ान ली। तो फिर वो मेरे से बात करने लगे, क्योंकि सब लोग ने ऑटोग्राफ ले लिया मुझे छोड़ के, और सब लोग मेरे को ऐसे देख रहे, पता नहीं ये कहां से जाहिल आया है, बीच में आ रहा है ये। तो फिर इसने मेरे को पूछा कि मैं आपके बगल में बैठा हूं, पहली दफा मुझे इतना रिलैक्स लग रहा है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मैं जब भी किसी प्लेन में ऐसे बैठता हूं और किसी के भी बगल में बैठता हूं, वो मुझे बैठने ही नहीं देता है। और आपने मेरे को पूछा भी नहीं कि मैं कहां से क्या कर रहा हूं, आप मेरे को जानते हैं। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जानता। तो उसने फिर बोला इतना रिलैक्स तो मैं कभी नहीं महसूस कर सकता कि आप मेरे को जानते तक नहीं है। तो मैंने फिर पूछा कौन है आप? ना मेरा नाम रणबीर कपूर है। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा वो कपूर फैमिली से आप? हाँ। अरे मैं ऋषि कपूर का बेटा हूं, उसको तो जानते हैं आप? बोला हाँ उनको जानते हैं। अच्छा आप उनके बेटे? तो वो पूछे कि आप फिल्में वगैरह नहीं देखते? मैंने कहा हमारा पूरा जीवन ही एक बड़ा फिल्म है। तो पॉइंट क्या है कि द मोर फेमस वन बिकम्स द मोर इनएक्सेसिबल। अब सोचो कि ये कौन है, कोई खान कपूर, ये जो ये सब इस संसार के टटपुंजी हैं। लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, षडैश्वर्य पूर्ण, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल सेलिब्रिटी, जिनका ऐश्वर्य कभी कम नहीं हो सकता, वो, और वो एक्सेसिबल है हम सब के लिए। इसलिए ये जो गुण है उनका एक्सेसिबल होना। लॉर्ड चैतन्य वॉज एक्सेसिबल इवन टू द जंगल एनिमल्स। मतलब बाकी तो छोड़ दीजिए, मनुष्य तो छोड़ दीजिए, कि जंगल के एनिमल झारखंड में वहां पर कि शेर हैं, जो हिरण हैं, जो सांप हैं, वो लोग सब चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आने के बाद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे हाल ही में खबर मिली, जानवरों की बात आ रही है, तो केरला में कासरकोड करके जगह है, वहां पर एक अनंतपुर का मंदिर है पद्मनाभ इनका, और वहां के तालाब में एक मगरमच्छ है जो कि वहां के जो पद्मनाभ जी हैं उनका महाराइस खाता है खाली, ये है वो। ये रोज ये कुछ 150 साल से है यहां पर, 150 साल पुराना इसकी आयु हो चुकी है, और ये 150 साल से है, और ये रोज केवल जो भोग लगा हुआ भगवान को चावल, बस वो चावल और गुड़ मिला हुआ यही वो खाता है। तो अगर हमको लग रहा होगा कि चैतन्य महाप्रभु ने कैसे जानवरों को हरे कृष्ण महामंत्र करवा दिया, अरे एक मगरमच्छ शाकाहारी हो सकता है? हाँ, कौन सा जानवर है? मगरमच्छ। दिस इज टू मच। बट नथिंग इज टू मच व्हेन इट कम्स टू चैतन्य महाप्रभुस मर्सी। हाँ, तो अब यहां पर हम अगर देखें श्रील प्रभुपाद, तो श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु जहां नहीं जा पाए, श्रील प्रभुपाद वहां पहुंचकर, आपको पता है 50 इयर्स जो हम लोग अभी मनाए लास्ट ईयर, इस्कॉन के 50 इयर्स मनाए, तो कई डिवोटीज बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु की ये जो आंदोलन है ये श्रील प्रभुपाद ने कहां कहां इसको नहीं फैलाया, परंतु एक जगह पर एंटार्क्टिका ये कॉन्टिनेंट में चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं फैली। तो हाल ही में डिवोटीज एंटार्क्टिका गए। आपको पता है एंटार्क्टिका कहां है? मतलब वो एक ऐसी जगह है जहां पर ह्यूमन बींग्स रह ही नहीं सकते ज्यादा, वो लोग कुछ एक्सपेडिशन के लिए जाते हैं वापस आ जाते हैं, इतनी वहां पर ठंड होती है, -60, 70, 80 ऐसा टेम्परेचर। वहां पर जाकर गौर नेताए और श्रील प्रभुपाद के ड्यूटीज को इंस्टॉल किया एंटार्क्टिका में। मुझे याद है हम लोग जब गोमुख गए थे, अब गोमुख जो गंगा का उद्गम स्थान, तो वहां पर काली बर्फ मेल्ट होकर गंगा में परिणित होती है, ग्लेशियर्स हिमालय की चोटी पर है और ग्लेशियर्स हैं जो परिणित होकर गंगा बनती है। मतलब सोचो कि हिमालय की बर्फ पिघलकर गंगा बनी है, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा वहां की गंगा का। तो हम लोग ट्राई किए कि यहां पर गंगा स्नान करना चाहिए गोमुख में, हाँ, और गायत्री करने का हम लोग निश्चय कर रहे थे अंदर जाकर। तो हमने जैसे ही मैंने टच किया, अपने उंगलियों से टच किया, तो जो पानी टच होकर गया मेरी उंगली को, ऐसे लगा कि जैसे किसी ने मेरी उंगली काट दी है, इतना ठंडा पानी। और वहां पर कुछ साधु थे, वो लोग देखे, वो लोग पागल हो गए, इसमें उतरोगे मर जाओगे तुम लोग। तो हम लोग ने फिर से अपने कपड़े पहन लिए और 3 ड्रॉप। फिर मैंने देखा एक इस्कॉन के डिवोटी आए, पीछे पीछे एक इस्कॉन के डिवोटी आए, पूरा मफलर बांधा हुआ है, वो मंकी कैप मफलर और 3-3, 4-4 जैकेट सॉक्स ये वो सब, और बैग से वो निकाल रहे हैं गौर निताय को, गौर निताय को निकाले और गौर निताय को गंगा स्नान करा रहे उधर, पूरा ग्लव्स पहने हुए। तो मैं देख रहा था चाहे वो गोमुख हो हिमालय में, एंटार्क्टिका में, और जैसे हम बता रहे थे पिछले बुधवार को कि टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल आया, व्हाट इज द बेस्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। तो इस टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल में बताया गया है, इफ यू सी इन अमेरिका, इफ यू सी इन लंडन, इफ यू सी इन ऑस्ट्रेलिया, यू विल फाइंड इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डॉक्टर्स एवरीवेयर। बट इफ यू गो टू कंट्रीज लाइक अफ्रीका, युगांडा, साइबेरिया, पता है साइबेरिया एक ऐसी जगह जहां पर ऐसा टेम्परेचर होता है कोई इंडियन आपको वहां पर दिखेगा नहीं। इन दीज कंट्रीज यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट यू विल फाइंड कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड इस्कॉन टेम्पल देयर। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ अवर डियर शिला प्रभुपाद। और शिला प्रभुपाद ने ये कहां से उन्होंने लिया, ये जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार। इसलिए आज का श्लोक जिस पर हमने मुख्य जो फोकस डाला है, जब भगवान कह रहे हैं कि मैं अब तुम्हें बताऊंगा, तो वो है अवतार का एक कारण कि अवतार स्वयं वो उतरते हैं, अवतरती इति अवतार, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु जो ऐसे विशेष अवतार हुए जो उतर कर हमारे साथ रहे, उठे बैठे, जहां तक कि जैसे हमने कहा कि धोबी के वो गंदे मैले कपड़े धोए ताकि उसका हृदय साफ हो सके। तो हम लोग जो केवल बाहर से अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहते हैं परंतु हृदय जो हमारा मैला है, तो चैतन्य महाप्रभु एक धोबी के कपड़े भी धोने के लिए तैयार हैं, ताकि यदि हम हरिनाम लेते हुए अपने हृदय को साफ कर दें। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमान गौरांग महाप्रभु आविर्भाव दिवस की, शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्री हरिनाम संकीर्तन की, निताय गौर प्रेमानंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
शिक्षाष्टकम प्रभु की, हरे कृष्णा। तो कुछ महत्वपूर्ण सूचना इस प्रकार से है।